शांति। आज 25 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इसमें साथी व सहयोगी बन सकते हैं। आप चाहे गूगल मीट पर चाहे यूट्यूब पर, दो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। जिस भी लिंक से आपको सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक रहते, और यूट्यूब लाइव का लिंक तो सवेरे 4 बजे से लेके रात को 9 बजे तक यही रहता है रोजाना के लिए। जब भी आप चाहें उस समय आप इस मुरली को, हमारी की गई किसी भी क्लास को आप कभी भी सुन सकते हैं सारा दिन। और इसके साथ यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर चलती हुई नीचे लाइन में दिखाई दे रहा, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप फोन नंबर के बाद देखेंगे आपको वेबसाइट भी दिखाई दे रही है www.brahmakumaris.com। इस पर आप 24 घंटे रोजाना आधी रात को भी जब भी चाहें यहां पर आप हमारी सारी वीडियोस लाइव और सब कुछ आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप प्रश्न उत्तर जानना चाहते हैं वहां आपको सारे मिलेंगे और आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये सब के पास भेज भी सकते हैं जिनको आप कल्याण करना चाहें। आपको समझ में आता है तो आप सेवा भी कर सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे सदा एक ही फिकर में रहो, सदा एक ही फिकर में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, पढ़ाई से राजाई मिलती है, पढ़ाई से राजाई मिलती है, पढ़कर अपने को राज तिलक देना, पढ़ाई से ही क्या मिलती है राजाई मिलती है। और तिलक भी हमें खुद देना है, पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, कोई और हमें राज तिलक लगाने के लिए नहीं आएगा। हमें खुद अपने को तिलक लगाना, कैसे लगाएंगे राज तिलक अपने आप को खुद? हम तो आत्मा है, आत्मा इतनी छोटी है उसको हम कैसे तिलक लगाएंगे?
हाँ जी,
हाँ जी, मैं तो तिलक को देख रहा था, इतना छोटा तिलक मैं कैसे अपने आप को लगाऊं? और आपने तो मंगल सूत्र भी पहनने के लिए काम दे दिया। मैं तो राजा बनने की सोच रहा था, कैसे बनूं, आपने रानी भी बनाने की सोच लिया। पढ़ाई में ऐसी कौन सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात कि हमने परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना, उसी में ही हमारा मंगल सूत्र है, अर्थात हमारा कल्याण। मंगल माना कल्याण, हमें परमात्मा मिल गया, हमारा कल्याण करने वाला मिल गया, यही हमारा मंगल सूत्र। और राज तिलक देना अर्थात परमात्मा की डायरेक्शन पर हमने अपने कर्म इंद्रियों को चलाना, अपने कर्म इंद्रियों के राजा बने। जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनेंगे तो हमें राज तिलक लग जाएगा। और हम आत्मा इतनी छोटी है, इतने सूक्ष्म है कि कोई भी स्थूल चीज की हमें जरूरत नहीं। कोई भी स्थूल चीज की जरूरत ही नहीं। फिर ये शब्द इतने बड़े बड़े क्यों प्रयोग किए गए, क्योंकि हम सूक्ष्म शब्दों को, सूक्ष्म बातों को समझेंगे कैसे, क्योंकि हमारी भाषा यही है। जिस भाषा को हम जानते हैं उस भाषा में बाबा हमें समझा रहे, हमें समझ में ही तभी आएगा। मंगल सूत्र माना एक ऐसा नियम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी विधि जिसके द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते। राज तिलक माना हम अपने आप को क्या कर सके, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बना सके। ये पढ़ाई है, जिस पढ़ाई से हमारा कल्याण और हमारा राज तिलक दोनों मिलेगा। बाबा आकर हमें ये विधि सिखाते हैं। प्रश्न, बच्चों को किस उल्लास में रहना, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? क्योंकि दोनों उल्लास और दिल शिकस्त, ये दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत शब्द है। उल्लास, उमंग, उल्लास हमारे अंदर रहे, बच्चों को किस उमंग उल्लास में रहना है, कैसे वह हमें उमंग और उल्लास रह सकता है। और जब हमारे पास उमंग उल्लास होगा तो दिल शिकस्त नहीं हो सकते। परंतु बाबा ने ये पूछा कि हम दिल शिकस्त क्यों ना हो। उमंग उल्लास से क्या फायदा है, दिल शिकस्त से क्या नुकसान है, ये बाबा हमें समझाना चाह रहे हैं। ये बात हमें समझ में आ जाए कि हम उमंग उल्लास में कैसे रहें, किस उमंग उल्लास में रहें। सदा यही उमंग और उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहे, लक्ष्य हमको याद रहे कि हमने ये बनना है। जब ये उमंग और उल्लास हमें रहेगा तो हम क्या होंगे, खुशी में उड़ते रहेंगे, हम सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनने वाले। ये हमें उमंग उल्लास हो तो हम खुशी में उड़ते रहें, उड़ते रहें। इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना, दिल शिकस्त कभी भी नहीं होना है। दिल शिकस्त होना माना मेरे बस का नहीं, मैं नहीं कर सकता, डिप्रेशन कभी नहीं होना है। क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते थे, और इस पढ़ाई की कोई फीस नहीं, और इसकी फीस है तो सिर्फ एक हिम्मत का कदम, एक हिम्मत का कदम आप बढ़ाओ तो क्या होगा? क्या होगा? हजार कदम की मदद करने के लिए बाबा आएंगे, बाबा की हजार कदमों की मदद मिलेगी। तो यदि आप दिल शिकस्त हो गए, हिम्मत का कदम नहीं उठा सके, तो सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारा उद्देश्य है, एम एंड ऑब्जेक्ट है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, पुरुषार्थ करना है। प्रालब्ध तो तब बनेगा जब पुरुषार्थ कर लेंगे। जब तक हम पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो हमें प्रालब्ध कैसे मिलेगा? और पुरुषार्थ करने के लिए मदद बाबा तभी करते हैं, सहयोग तब देते हैं जब हिम्मत का कदम हम आगे बढ़ाते। यदि हम हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाते तो हजार कदमों की मदद बाबा की तरफ से नहीं मिलती। बच्चे कहते हैं बाबा आप थोड़ी सी हिम्मत दे दो, बाबा स्ट्रेट सीधा मना कर देता है, मैं नहीं दूंगा। इतना कहना मानता है बाबा हमारा। हम बाबा को कह दें बाबा थोड़ी सी हिम्मत दे दो, बाबा कहता नहीं दूंगा। कितना प्यार करता है बाबा हमारे से, किसी को कहें कि हमारा बाप कहता है नहीं दूंगा।
लोन नहीं है भाई जी।
हाँ जी,
लोन नहीं है ना ड्रामा में।
लॉ, लॉ नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं
है। वो नियम बाबा ने दिए हैं, वो नियम घर में चलना है, जो सूत्र हमने बांधा है वो सूत्र में चलना है।
अब ये नियम जरूरी बनाना था, हिम्मत भी हमें दे देता थोड़ी सी। तो हिम्मत नहीं देगा बाबा। हिम्मत तब मिलेगी, उतनी मिलेगी जितनी आप हिम्मत करेंगे, उतनी मदद मिलेगी। कानून बनाने वक्त हमें नहीं बिठाया। गीत, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी, महिमा एक की है और कोई की महिमा गाई नहीं जाती। एक की महिमा है और किसी की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। अब इन सब के ऊपर किसकी महिमा है? एक शिव बाबा की। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई जाए? किसकी महिमा गाई जाए बताओ? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो ब्रह्मा ऐसा कर सकता है? विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण बन सकते? ये भी ऐसे ना बने। और महिमा है सूर्यवंशी घराने, महिमा सबसे ज्यादा फिर किसकी आती है? शिव बाबा के बाद जो सूर्यवंशी घराने के हैं, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए, बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसकी महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। कोई विदेशी है, फॉरेनर्स है, उनकी भी कोई महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। शिव बाबा से ही हमको क्या मिलता है, ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। शिव बाबा से इतना ऊंच पद मिलता है, हमें ऐसा टीचर पढ़ाने वाला मिला है जो दुनिया में और कोई है ही नहीं। ऐसा टीचर है जिसका कोई टीचर नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, जिसका अपना शरीर नहीं, और वो पढ़ाने के लिए 24 घंटे तैयार है। आप पढ़ने वाले बने, 24 घंटे बाबा सेवा करने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से, अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, और नहीं पढ़ेगा तो नहीं पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा ना सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ये पढ़ाई। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित बन गए, सज्जा बन गए हैं, तमो प्रधान पतित बन गए। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है, पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है, पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित, है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसकी, वहां कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहां पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहां तो कोई गृहस्थियों की भी, यहां तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। घर में रहने वाले गुरुजी बने बैठे हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी महिमा करते हैं, वाह 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 आप तो हमारे लिए भगवान, जैसे वही खुदा अल्लाह है। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है, वही फिर सब कैसे हो सकते हैं, वही फिर सब कैसे हो सकते हैं। दुनिया में कितना घोर अंधियारा है, दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को ये ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को क्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मोजने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, ये कभी भी नहीं सोचना। ये पढ़ाई ऐसी है खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो, कोई को भी ये बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा ही स्वधर्म एक ही है, आत्मा का स्वधर्म एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं, कोई को भी समझा सकते हो, किसी को भी आप समझा सकते हो। आत्मा का बाप कौन? फार्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। फार्म में भी बहुत सोच समझ के प्रश्न लिखे हुए हैं, जिन्होंने फार्म देखा होगा। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते, किसी को भी फादर कह देते। मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु वे कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं। वो हमारा माता पिता कैसे है, वो कौन है कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही किसी भी पत्थर की मूर्ति के आगे जाकर कहने लग जाते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। अभी पता नहीं है ये पत्थर हमारा कैसे माता पिता। भारत में ही तुम मात पिता कहे बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते, हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेश में सिर्फ गॉड फादर कहे बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को एडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहां भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर तुम बच्चों को एडॉप्ट करते। बच्चे पैदा होते हैं इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वे है आत्माओं का बाप, फिर यहां आकर उत्पत्ति करते हैं। यहां तुम बच्चे जानते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वे तो है स्वीट होम, जहां सब आत्माएं रहती हैं, जहां सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बगैर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो, तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, ये है ही आयरन एज दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस अपने घर। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती है। आत्माएं स्वीट होम, हाँ जी,
स्वीट होम ब्रह्मा में परम अवस्था है।
हाँ जी,
छठा महातत्व क्यों बोलते हैं उसको, ब्रह्म तत्व को?
छठा महातत्व इसलिए कहा गया कि पांचों तत्वों में ये है ही नहीं। आखिर ये है तो कुछ तो है ना, जो है उसे तत्व कहना पड़ेगा। पांच तत्वों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं,
परंतु
हाँ जी,
ये तो स्थूल है, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं,
तो वो भी सूक्ष्म है, तो भी है तो सही ना। सूक्ष्म भी है तो बहुत सूक्ष्म है, परंतु वो है तो सही ना। उसके बिना ये शरीर चल नहीं सकता, उसकी एग्जिस्टेंस है, उसका अस्तित्व है। जब वो है तो वो जरूर कोई तत्व है, हम नहीं जानते, ये हमारी अज्ञानता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं?
अक्षमता बोल सकते हैं, हमारी अक्षमता बोल सकते हैं।
क्षमता, 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 हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसे देख सके, हमारी क्षमता नहीं है कि हम उसे एक्सप्लेन कर सके, हम उसे समझ कर समझा सके। इसलिए हमें तीसरा नेत्र कहा, ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ, क्योंकि बाबा आकर समझाते, बच्चे जो कुछ नहीं होता तो वो होता भी नहीं। आत्मा है तो है, वो बात अलग है कि हम इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, बाकी वो है तो सही ना।
नहीं,
समझ की बात कुछ नहीं, बस मेन बात है कि आत्मा जो है छठा महातत्व आत्मा है,
आत्मा ही छठा महातत्व है, परमात्मा ही छठा महातत्व है, ऐसा
आत्मा परमात्मा और परम धाम तीनों एक ही बात है ना। इस बात, हाँ इस बात को बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि इनको स्पेस चाहिए जीरो। इस छठा महातत्व को स्पेस चाहिए जीरो। जीरो स्पेस होने के कारण ये पानी में भी है, आकाश में भी है, और हर एक तत्व में, पांचों तत्वों में है। ये पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व में घुसे या किसी भी तत्व से बाहर निकले, उस तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि यदि कोई भी चीज पानी में डाली जाएगी उतना पानी बाहर आएगा, परंतु परम धाम या परमात्मा या हम आत्माएं सारी की सारी पानी के गिलास में जाए, एक ड्रॉप भी बाहर नहीं आएगा। तो कोई पानी पर असर ही नहीं हुआ। आग में चला जाए, आग पर कोई असर नहीं, आग का उसके ऊपर कोई असर नहीं। इसलिए पांचों तत्वों से अलग। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होते। कोई भी देहधारी को, कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबर वार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी कोई को समझाना सहज, किसी को समझाना क्या है, सहज है। भारत में इनका राज्य था, यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राज योग सिखला रहे हैं नई दुनिया के लिए। राजाओं का राजा कैसे बन सकते, राजाओं के राजा कैसे बन सकते हैं? दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं? वे बतलाते हैं, बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है ये दुनिया में कोई भी नहीं जानता। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं, बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है, या कहते सबके अंदर है, सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, अच्छी रीति धारण कर औरों को, अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव, लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनता है। सदैव कौन सा बनता है? हर्षित मुख वाला ही बनता है, बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, जो उच्च दर्जे पर पढ़ते होंगे अच्छे लेवल पर पढ़ाई पढ़ते होंगे उनको कितनी खुशी होती है। दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की भी कोई बात नहीं, फीस का भी कोई चक्कर नहीं, ड्रेस का भी कोई चक्कर नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर मुंह काला किया तो बहुत जबरदस्त माया है। फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। पुराने पुराने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। क्या पुरुषार्थ करें कि हमको राजधानी मिल जाए? हाँ जी, दैवी गुण धारण करें। दैवी गुण हम धारण करेंगे, राजधानी हमें मिलेगी। राजधानी मिलने का आधार है ऐसा व्यवहार कुशल बनना कि हम सब के दिलों में राज करें। आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, ये है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि ये क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं। ये फर्स्ट नंबर में है, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहां भी ऐसे हैं। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे, तब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? नापास होने वाले को कौन प्यार करेंगे? मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। किसी को भी नंबर 1 गलत बना देता है उसकी जो आदतें हैं वो खराब है, संस्कार खराब है। बायोस्कोप जाने वाले उसमें जाने वाले बहुत करके, जो बायोस्कोप देखने जाते हैं, बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बायोस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। अब तो होता ही है कि रात को जब तक फिल्म ना देख लेवे तब तक कैसे सो जाओ। जहां जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए, जिसमें मनुष्य दुनिया में खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए, ये विनाशी खुशियां, अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना, बाबा हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म। क्यों क्यों ऐसा लिखते हैं आप बाबा?
भाई जी,
हाँ जी,
पहले 21 जन्म के लिए लिखते थे, आप 50-60 के लिए इस बोले तो।
क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते रहते हो, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता। यहाँ तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख होता, तब दुख शुरू होता है जब तमो प्रधान बनते हैं। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुख होता है तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं, सबका बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबको मुक्ति धाम, फिर सतयुग की रजाई में तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है, होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, दुख की बात ही नहीं हो सकती, ना दुख ना अशांति, या तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा बदल जाती, 100 मील पर भाषा बदल जाती, कौन सी भाषा होगी? कितनी फ्रैक्शन है, 100 मील पर भाषा भी बदल जाती है, अलग है। अब कहते हैं भारत का कि प्राचीन भाषा संस्कृत है, अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं।
भाई जी,
सत्युग
में सिर्फ नाम
ही
बदल गई भाषा होती है ना।
हाँ, सब सत्युग में एक भाषा होती है, थोड़े से लोग।
तो यहाँ पे अनेक भाषा है, 100 मील पे भी भाषा बदल जाती है, वहां तो भाषा बदलने की हर तरफ एक ही भाषा होगी वहां पे,
क्योंकि वहां सारे बहुत जल्दी एक दूसरे को मिल सकेंगे और यहाँ तो मिल ही नहीं सकते।
भाई जी, भाषा बोले तो मुख से बोला जाता है, वहां से मुख से बोलने की बात ही नहीं है, वो तो संकल्पों की भाषा होगी, तो सबकी एक ही भाषा होगी।
तो फिर कैसे कहते हो कि ये प्राचीन भाषा है? तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबर वार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये डल हेड। देखने में भी आता है जैसे पत्थर बुद्धि। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान, इनकी बुद्धि का ताला खोलो, बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते। बाबा आकर क्या करते हैं? तुम बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता है, खुलता जाता है, फिर और भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। और कोई कोई की बुद्धि ऐसी है, कितना बोलते रहो उनकी बुद्धि खुलती ही नहीं। बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूं कि तुम्हारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलू, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए, हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? उनको ही आना पड़ता है।
सब नंबर वार बन रहा है ना भाई जी? हाँ, एक साथ सब,
बिल्कुल
एक साथ सभी
सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही है। आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे? बाप कहते जिसने आना नहीं तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि का ताला खुलेगा। मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबर वार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी? ये तो कायदा नहीं है। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति पर सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर में घर ले जाऊंगा, अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शोर निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी आयरन एज, तो यहां गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती है? जब विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो। भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति थी, आखिर ये समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का ना बाला होना है, उस पढ़ाई में कितने कितने किताबें आदि पढ़ते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जोहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जोहर आए। भल बंधन में भी हैं, फिर भी याद करते रहते। फिर भी याद तो करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू, बाप की याद में प्यार के आंसू भी आ जाते हैं। वे आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिच्ची लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर फिर ऊंच पद पाना। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना। सदा ज्ञान तलवार में याद का जोहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त कर। मुक्त कर, मुक्त होने वाले सारी कमजोरियों से परिवर्तन करके सारी कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी इससे न्यारे रहेंगे। लौकिक परिवार की कीचड़ में रहते हुए भी आप न्यारे रहेंगे। स्लोगन, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेगी, इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।